नमस्कार भारत, 28 जनवरी दिन रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। राजधानी काबुल में आत्मघाती हमले को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाया चरमपंथियों की मदद का आरोप। बम धमाके में अब तक हो चुकी है 95 लोगों की मौत।
ساعت شو بمو تحقیقا معلوم نیست که ساعت چند بجه بود دیگه از گیتی اولی وزارت داخلی کنه
اتر پردیش کے کاسگنج میں شکروار سے جاری ہنسا کے بعد ماحول اب بھی تناؤ پورن مگر پولیس نے کہا نینترن میں ہے ستھتی
ہمارے سارے آفیسر لگاتار راؤنڈ پہ ہیں پریاپ فورس ہے یہ ضرور ہے کہ صبح میں چار پانچ گھٹنائیں ہو گئی تھی لیکن اس کو ہم لوگوں نے کنٹرول کر لیا
بتائیں گے بنگلہ دیش میں رہ رہے روہنگیا شرنارتھیوں کے اب کیا ہیں حالات होंगी खेल की खबरें भी लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। अफगानिस्तान की सरकार ने काबुल में हुए आत्मघाती हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। इस हमले में 95 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि हमला तालिबान समर्थक हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तान की मदद से किया है। अफगान सरकार ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। वहीं पाकिस्तान हमेशा से तालिबान और अन्य चरमपंथी समूहों का समर्थन देने को नकारता रहा है। शनिवार को काबुल में विस्फोटकों से भरी एक एम्बुलेंस से एक सुरक्षा चौकी पर धमाका किया गया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि तालिबान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। एक सप्ताह पहले ही तालिबान ने एक होटल पर किए गए हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। न्यूयॉर्क स्थित संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच से जुड़ी पैट्रिशिया गॉसमैन का कहना है कि नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
This week we've seen just appalling levels of violence and I think many Afghans are asking how much longer can go on this way.
इस सप्ताह हमने हिंसा का दर्दनाक दौर देखा है और अब मुझे लगता है कि अफगान पूछ रहे हैं कि ये सब कब तक चलता रहेगा और वास्तव में बीते एक साल से ऐसे हमलों की संख्या बढ़ी है। बीते साल ट्रक से हमला किया गया था, सैन्य अस्पतालों को निशाना बनाया गया था। आप जानते हैं कि उन्होंने दावा किया है कि निशाने पर गृह मंत्रालय था लेकिन वास्तव में हम सब जानते हैं कि जिस सड़क पर हमला किया गया वहां बहुत से नागरिक थे, नागरिक जो इस युद्ध की दर्दनाक कीमत चुका रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। शहर के कई इलाकों में रह रहकर आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और शहर में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोज जेमान ने फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बेहद कम अंतर से मिली अपनी जीत का स्वागत किया है। लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जेमान ने कहा, चेक गणराज्य के लोगों के विश्वास ने मुझे 5 और सालों के लिए देश का प्रभारी बना दिया है। मुझ पर भरोसा है कि मैं लोगों को निराश नहीं करूंगा। 73 वर्षीय जेमान ने 91% मत हासिल किए और अपने प्रतिद्वंदी जीरी द्राहोस को हराया है। द्राहोस एक शिक्षाविद हैं जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। जेमान मुस्लिम देशों से आने वाले प्रवासियों का विरोध करते हैं और वो रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के भी खिलाफ हैं। वो चीन के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के भी समर्थक हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रीय समिति के वित्तीय चेयरमैन ने यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अरबपति दोस्त स्टीव विन पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों महिला कर्मचारियों से यौन कार्य करवाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कसिनो मालिक स्टीव विन ने मैनिक्योर देने वाली एक महिला को आरोप न लगाने के बदले $10,00,000 दिए थे। उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि इन मनगढ़ंत आरोपों के पीछे उनकी पूर्व पत्नी है जिनसे तलाक को लेकर विवाद चल रहा है। स्पेन की संवैधानिक अदालत ने कैटलोनिया के स्वनिर्वासित नेता कार्लस प्यूसदिमोन से कहा है कि उन्हें निर्वासन से लौटने के बाद ही क्षेत्र के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जा सकेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। कल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक भीड़भाड़ भरे इलाके में हुए आत्मघाती बम धमाके में 95 लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान पर इस हमले को अंजाम देने वालों की मदद करने का आरोप लगाया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
शनिवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार चरमपंथी हमले से दहल गई। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी एम्बुलेंस को शहर के भीड़भाड़ भरे इलाके में एक सुरक्षा नाके के पास उड़ा दिया। घटनास्थल पर मौजूद रहे मिर्जा मोहम्मद नाम के शख्स ने धमाके के बाद के मंजर को कुछ इस तरह बयां किया।
सात सुबह तकीकन मालूम ने इसके सात चांद बजा बुत देगा गए थे।
मुझे नहीं पता कि धमाका कब हुआ, मगर आत्मघाती हमलावर ने गृह मंत्रालय की पुरानी इमारत का पहला गेट पार किया और फिर दूसरे गेट पर जाकर रुक गया। यहीं पर धमाका हुआ। मैंने देखा कि पुलिस वाले मृतकों और घायलों को गाड़ियों में डाल रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन मरा हुआ है और कौन जिंदा है। ये थे एक चश्मदीद के शब्द। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि आत्मघाती हमलावर जिस एम्बुलेंस पर आया था वह विस्फोटकों से भरी हुई थी। इस घटना में अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल के पास ही रहने वाले अफगान सांसद मीरवाइज यासीनी कहते हैं, हमारा परिवार लंच कर रहा था, तभी घर के करीब 35 मीटर दूर धमाका हो गया। ये इतना जोरदार था कि मेरे घर में कांच बिखर गया। सौभाग्य से मेरे परिवार के सदस्य तो सुरक्षित हैं, मगर मेरे नौकर का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो किसी अस्पताल में है या कहीं उसकी मौत न हो गई हो। ये थे अफगान सांसद मीरवाइज यासीनी के शब्द। अफगानिस्तान में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने हमले को अंजाम देने के लिए एम्बुलेंस के इस्तेमाल की निंदा करते हुए कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है। इसी बीच अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर इस हमले को अंजाम देने वाले चरमपंथियों की मदद करने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान का कहना है कि शनिवार को हुआ हमला तालिबान से जुड़े हक्कानी नेटवर्क ने किया, जिसे पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में चरमपंथियों की मदद करने के आरोपों को नकारता रहा है। पिछले हफ्ते ही काबुल में एक बड़े होटल में हमला हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है।
अफगानिस्तान में हुए इस आत्मघाती बम हमले में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और ऐसे में मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में शुक्रवार से जारी हिंसा अभी तक थमी नहीं है। हालांकि शुक्रवार के बाद किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई, लेकिन वाहनों और दुकानों को आग के हवाले करने का क्रम शनिवार को देर रात तक चलता रहा। इस बीच दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सुनिए कासगंज से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
शनिवार को सुबह से लेकर देर रात तक कासगंज की सड़कों का सन्नाटा इन्हीं आवाजों से दूर रहा था। पूरे शहर में कहीं जली हुई दुकानें दिख रही थीं तो कहीं जली हुई गाड़ियां। मुख्य सड़कों पर सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बल के जवान दिख रहे थे और गलियों के भीतर से कई बार लोगों का झुंड बाहर का नजारा देखने निकल पड़ता। इस बीच हम नदरई गेट के पास उस इलाके में पहुंचे जहां हिंसा सबसे ज्यादा हुई थी। कासगंज का ये गली शिवालय इलाका है और यहीं पे सुशील गुप्ता जी का घर है। सुशील गुप्ता चंदन गुप्ता के पिता हैं, जिनकी की शुक्रवार को यहाँ कासगंज में हुई हिंसा में मृत्यु हो गई। यहाँ उनके घर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़ा गमगीन माहौल है यहाँ पे। और पता नहीं सुशील जी हमसे बात करेंगे नहीं। सुशील जी, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का, कुछ बताएंगे आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था?
मेरा बच्चा सुबह बता पौने 10 बजे करीब यहाँ से निकला, 5-6 बच्चे और थे बताए मोटरसाइकिलों पर, भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए हाथों में झंडे लिए हुए गालों पे झंडे लगा करके अपने निकल के जा रहे थे। उसके बाद ये पहुंच गए हैं तहसील वाली गली में, वहाँ पर मुसलमान लोगों ने इनको रोक लिया, इनकी मोटरसाइकिल वगैरह में डंडे डाल दिए और ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिएगा और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो। लेकिन हमारे बच्चे नहीं माना, उसी समय तुरंत फायरिंग करने लगे, मेरा बच्चा उसमें शहीद हो गया।
ये जो गोलीबारी की घटना हुई किस जगह पे हुई थी?
तहसील रोड पर GIC स्कूल है
त्रिवलम था, क्योंकि उनकी महिलाओं ने ऊपर से तेजाब की बोतलें फेंकी। अगर प्रिप्लान नहीं था तो ये रखी है इमीडिएटली कहाँ जा सकती हूँ भाई आप?
ये जो यात्रा निकाल रहे थे बच्चे, तो ये हर साल 26 जनवरी को करते हैं या पहली बार?
जी हाँ, आप भेज कराइए। तकरीबन 2 साल से ये इसके साथ के बच्चे चंदन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर पर ये सब जाते हैं हमेशा। यहाँ
तिरंगा झंडा फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत माता की जय कहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऐसा जो किया वो गलत किया उन लोगों ने, तो बच्चे की जान ले ली गई।
जब हमारा बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है, हमारी बॉडी बच्चे की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, तो हम दंगा करने जाएंगे, फिर बच्चे को देखेंगे तो फिर पूरा फोर्स तरीके बाहर खड़ा हुआ है और सारे अधिकारी खड़े हुए वहाँ पे।
इसका मतलब हम कोई भी राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे तो हमें उसके बदले गोली मिलेगी? इसका मतलब हम राष्ट्रीय पर्व मनाना छोड़ दें?
गुस्सा इधर भी था और गुस्सा करीब 2 किलोमीटर दूर बिलराम गेट इलाके में भी था, जहाँ से इस फसाद की शुरुआत हुई थी।
कासगंज में पीर छल्ला मोहल्ले में हैं हम, और ये इस मोहल्ले में उन्हीं नौशाद का घर है जिनकी की शुक्रवार को कासगंज में हिंसा भड़की थी, गोलीबारी हुई थी और उस गोलीबारी में नौशाद घायल हुए थे। नौशाद के पिताजी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था, कैसे हुआ था?
सुबह चलो वो धक्का हो गया, सुबह आया गोली लग गई अस्पताल ले रहे थे उसे।
मारा किसने, कुछ पता लगा, किसी ने बताया?
दरोगा जी सजी कह रहे हो, दरोगा जी बाजी जी।
और भी उसके साथ में कोई था जो अकेले था वहाँ से?
वो अकेला सौदा लग गया बिल्ला को।
ये उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, कितनी उम्र है इनकी?
ये है 14-12 साल की, एक है 4 साल की, एक है 2 साल की। तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ से जब वो गए तो भगदड़ मची, बस वो भाग ही रहे वहाँ से, वो भागते भी उन्हें गोली लगी।
वो ये भी नहीं बता पाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब थी और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जैसा कि उनके परिवार वालों का कहना है।
पर हम बाहर तो नहीं जा पा रहे और बोल दिया गया कि यहाँ पर सारी सिचुएशन इन्होंने संभाल लिया, लेकिन कोई सिचुएशन इन्होंने नहीं संभाल पाए थे। और दूसरी बात ये कि इन्होंने उनको बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, हमारी सारी दुकानों में आग लगा दी गई है, दुकानें लूट ली गई हैं, प्रशासन की तरफ से बहुत ढिलाई बरती जा रही है।
आप लोगों ने किसी से कहा नहीं, प्रशासन में किसी से कहा हो या
हमें घरों से निकलने ही नहीं दिया जा रहा है? हमें तो एक तरफ कार्रवाई हो रही है हमारी तरफ, तो क्योंकि हमें घरों में घुसेड़ दिया जा रहा है, उन्हें खुला छूट दी जा रही है और वो आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं।
हर 15 मिनट के बाद यहाँ पर पुलिस आती है और जो भी यहाँ पे दिखता है उसको उठा के लेके जा रहे हैं। अरे सारा प्रशासन सिर्फ हमारे लिए ही लगाया हुआ है।
वो लोग आप लोगों के आमने सामने उन लोगों से कोई बात नहीं है?
नहीं, आमने सामने नहीं है सर, हमको जो
सिलेंडर उन लोगों ने पूछा ना, हमने बताया वो यहाँ पे खामखाई है।
कोई MP MLA आपके यहाँ भी आया था?
कोई भी नहीं, एक भी नहीं आया यहाँ पे। नौ लोगों ने हमसे पूछा, हमारी मस्जिदों में आग लगाई गई, हम पे जुलम ढाया जा रहा है, पुलिस आ रही है MLA में।
बहरहाल सबके बीच ऐसे तमाम वो लोग भी थे जो किसी कारण से कासगंज आए थे या जिन्हें आना पड़ा था और इस दहशत की वजह वो समझ नहीं पा रहे थे। फिलहाल कासगंज के लोग शनिवार रात को भी दहशत के साए में रहे और रह रहकर गाड़ियों और दुकानों में आगजनी की खबरें आती रही। समीर आत्मज मिश्र, BBC कासगंज।
लगातार जारी हिंसा के बीच पुलिस दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने शनिवार देर शाम कासगंज में मौजूद अलीगढ़ क्षेत्र के ADG अजय आनंद से बात की और सबसे पहले ताजा हालात के बारे में पूछा।
देखिए, हालात का तो सबसे बेहतर जानकारी आपको ही होगी, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद कहीं किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जैसा आपने कहा कि हम लोग लगातार राउंड पे हैं, हमारे सारे ऑफिसर लगातार राउंड पे हैं, पर्याप्त फोर्स है। ये जरूर है कि सुबह में 4-5 घटनाएं हो गई थी, लेकिन उसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। एक चीज और है कि कहीं किसी मारपीट की सूचना नहीं है, किसी को चोट लगने की नहीं सूचना है, किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हो गई उसमें जो चिन्हित लोग हैं उनके हम लोग 39 लोगों को हमने प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार कर ही लिया है और 9 लोग को जो सब्सटेंसिव जो FIR लिखी उसमें गिरफ्तारी है।
एक FIR हुई है, कितनी हुई है, थोड़ा इसकी डिटेल?
ये अभी विस्तृत तो मैं नहीं बताऊंगा, 2 FIR हुई है अभी और देखा जाए, मैं विस्तृत जानकारी इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पाऊंगा।
सर एक चीज ये बताएं, कल शाम से ही यहाँ पे आ रहे हैं फॉर पीएससी और सारी जितनी फोर्सेज हो सकती थी वो लगाई गई थी, उसके बावजूद आज सुबह और दिन भर, अब जो आप बता रहे हैं कि 2 बजे के पहले हिंसा भी हुई है, आगजनी भी हुई, ये कैसे संभव हो पाया? मतलब इसमें कमी रह गई या क्या रह गई?
देखिए कुछ स्पोरैडिक घटनाएं होती हैं, चारों तरफ फोर्स लगा दीजिए फिर भी हर कोने पर, आप कोई रिमोट कॉर्नर पे भी आप हर जगह उतने आदमी पर्याप्त नहीं दे सकते हैं। हम लोग की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट होती है और स्ट्रेटेजी बना के हम लोग कार्रवाई करते हैं। कहीं कहीं मैं ये जरूर मानता हूँ कि 2-3 घटनाएं सुबह में, 2-3 या 4-5 घटनाएं हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जो थोड़ा रिमोट एरियाज है उसको भी कवर किया। जो जो आदमी को लैप्सेस दिखाई देते हैं हमारे पुलिसिंग में उसको हम लोग पूरे करते रहते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस और हमें उम्मीद है कि अब कोशिश तो यही रहेगी और उम्मीद है कि कोई और घटना ना हो।
अभी कर्फ्यू जितनी जगह लगाया गया था उतनी ही जगह है, कल से आज तक में कर्फ्यू को लेकर के कोई चेंजेस हुए हैं, कोई बदलाव?
एक स्पष्ट कर दूं कि कोई कर्फ्यू नहीं लगा,
कल भी नहीं लगा,
लेकिन मैं कल भी नहीं लगा था, लेकिन मैं उपद्रवियों को रोड पर आके तांडव करने की इजाजत नहीं दे सकता।
लेकिन सर कर्फ्यू की घोषणा की जा रही थी लाउड स्पीकर से की जा रही थी, हमारे पास
नहीं, वो पुष्ट सूचना है, हम लोग को भी ऐसी सूचना मिली थी, हम लोगों ने तुरंत खंडन किया था, कोई कर्फ्यू नहीं,
उसके वीडियोज है सर।
तो पुलिस का कहना है कि कासगंज में कर्फ्यू लगाया ही नहीं गया था। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां में शनिवार को सेना की फायरिंग में 2 युवाओं की मौत होने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। इसके विरोध में अलगाववादियों ने रविवार को बंद की अपील की है। एक रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
दक्षिणी कश्मीर के जिला शुपियान के गनूपुरा इलाके में यह घटना उस समय पेश आई जब इलाके से सेना की एक कानवाई गुजर रही थी, जिस दौरान इलाके में कुछ युवाओं ने सेना पर पथराव किया और जवाबी कार्रवाई में सेना ने पथराव करने वाले युवाओं पर फायरिंग की। हालांकि इलाके के चश्मदीदों का कहना है कि इलाके का एक चरमपंथी 3 दिन पहले मारा गया था और सड़क के किनारे युवाओं ने काला झंडा लगाया था, और जब सेना के जवानों ने झंडा देखा तो सेना के जवान गाड़ी से उतर गए और झंडा उतारने लगे। ठीक, चश्मदीद बता रहे थे कि सेना ने जब झंडा उतारा तो वहां मौजूद युवाओं ने सेना पर पत्थर मारे और जवाबी कार्रवाई में सेना ने पत्थर फेंकने वाले युवाओं पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिस फायरिंग में 24 साल के जावेद अहमद और 20 साल के जावेद सुहेल मारे गए जबकि अन्य युवा घायल हो गए हैं। ये थे इलाके के एक चश्मदीद के शब्द। तहम सेना ने अपने एक बयान में कहा है कि उनकी एक कानवाई जब इलाके से गुजर रही थी जिस दौरान 100 से भी ज्यादा युवाओं ने कानवाई पर बिला जवाज भारी पथराव किया और एक अधिकारी को पीट पीट कर मारने, हथियार छीनने और सेना की गाड़ियों को जलाने की कोशिश की। सेना ने कहा है कि उनके जवानों को मजबूर होकर आत्म सुरक्षा में गोली चलानी पड़ी जिसमें 2 युवाओं की मौत हो गई जबकि पथराव में एक अधिकारी समेत 7 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। अलगाववादियों ने आज इन मौतों के खिलाफ कश्मीर बंद बुलाया है। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घटना के फौरन बाद केंद्र सुरक्षा मंत्री से फोन पर बात की है और उन्हें बताया है कि इस तरह की घटनाओं से राज्य में शुरू की गई राजनीतिक पहल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
फिर से रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो कल अपने 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। आज वो कॉक्स बाजार इलाके में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों का दौरा करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिन मुद्दों पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात होगी उनमें रोहिंग्या संकट का मुद्दा भी शामिल होगा। बीते साल म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुई हिंसा के बाद लाखों अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों ने अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश में शरण ली थी। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में हैं। उन्होंने 4 महीने पहले भी इसी इलाके का दौरा किया था। उनसे जानते हैं कि 4 महीने पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या बदलाव आया है। वो सीधे वहां से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आप सितंबर में वहां गए थे, अभी की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या फर्क नजर आता है वहां पर?
आदर्श, जो स्थिति में फर्क है वो 2 स्तर पर है। पहला तो ये कि 1 स्तर पे बिल्कुल फर्क नहीं है, दूसरे स्तर पर बहुत ज्यादा फर्क है। تو پہلے ہم بات کریں کہ فرق کیا ہے. تو فرق یہ ہے کہ ستمبر میں یہاں پر لاکھوں آدمی, جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا قریب 3 سے 3.5 لاکھ لوگ آ چکے تھے, 3.5 لاکھ لوگ, اور اس کے بعد سے قریب 4 لاکھ لوگ اور آئے ہیں. یہ وہ شرارتی ہے جو بھاگ کر آئے ہیں رکھائن پرانت سے برما کے, اور اس لیے اس سمے حالات بہت بدتر تھے, کھانے پینے کی دقت تھی, بہت سی چیزیں تھیں. اس کے بعد سے تمام انتراشٹری ایڈ ایجنسی سامنے آئی ہیں, انہوں نے بہت مدد کی ہے. یہاں پر کیمپس جو ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ اب آرگنائز ہیں, ریفیوجی کیمپس جو ہیں. لیکن دوسرے استر پر جو دقت ہے, جو سٹی جس کی تس بنی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ آج بھی ان لاکھوں شرنارتھیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا بھوشیہ کیا ہے. آج بھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اب کبھی اپنے دیش لوٹ پائیں گے یا نہیں لوٹ پائیں گے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سرکشا کی ان کی گارنٹی کتنی ہے. جی. اور یہاں پر جو حالات ہیں اس میں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سنکٹ جو ہے تھوڑا ابھی اور زیادہ دن تک کھینچ سکتا ہے.
جی, اس سنکٹ کا جو ایک پریکٹیکل حل ہے وہ کیا نظر آتا ہے نیتن؟
دیکھیے, ابھی تک جو اس سنکٹ کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بائیلیٹرل ہے, یعنی کہ دونوں ملکوں میں. بنگلہ دیش برما سے کہتا رہا ہے اور برما نے کہا ہے کہ ہاں صاحب ہم بات کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے بیچ میں کہا تھا کہ ہم شرنارتھیوں کو لینا بھی شروع کریں گے, لیکن ان کی شناخت کرنے کے بعد, ان کے آئیڈینٹی پیپرز دیکھنے کے بعد, ان کو بسانے کے لیے. لیکن جو ہماری لگاتار بی بی سی کے برمی سروس کے سہیوگیوں سے بھی بات ہو رہی ہے, جو ادھر سے برما کی طرف سے جو کوششیں ہیں وہ اتنی جینوئن نہیں دکھتی, اتنی اصل نہیں دکھ رہی ہیں ابھی تک. وہ دیکھ کر آئے ہیں ابھی رکھائن میں, اور جو 23 تاریخ کی ڈیٹ کو جو شرنارتھیوں کا واپس جانا شروع ہونا تھا وہ ابھی ٹل گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی جو پولیٹیکل انٹینشن ہے, جو راجنیتک پہل ہونی چاہیے جس طرح سے دونوں ملکوں میں, خاص طور سے برما میں, وہ ابھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سب کے بیچ ادھر میں لٹکے ہیں یہ 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا شرنارتھی.
بہت بہت شکریہ نیتن. نیتن بنگلہ دیش کے کاکس بازار علاقے میں ہے جہاں پہ روہنگیا شرنارتھی شیویروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اب وقت ہے اخباروں کی سمیکشا کا. دل نواز, کیا کہتے ہیں دلی سے چھپنے والے اخبار, آج کیا سرخیاں ہیں؟
جی, کاس گنج میں جو تناؤ جاری ہے اس سے جڑی ہوئی خبریں آج کے اخباروں میں ہیں. جنستا بتا رہا ہے کہ دوسرے دن بھی ہنسا ویاگ, یعنی جلتی ہوئی بس کی تصویر اخبار نے پرکاشت کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سبھی اخباروں میں پہلے پنے پر ہے, ہم نے بھی ذکر کیا ہے, کشمیر میں بھارتیہ سینا کی گولی باری میں جو دونوں جوانوں کی موت ہوئی ہے, اس کا ذکر سبھی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے. اور پدماوت فلم کو لے کر کافی وواد ہوا تھا, لیکن اس وواد کے باوجود فلم نے باجی راؤ مستانی جو فلم تھی سنجے لیلا بھنسالی کی ہی, اسی سے دوگنی کمائی اب تک کر لی ہے اگر 4 دن کا اوسط نکالا جائے تو. دینک بھاسکر کے مطابق پدماوت فلم نے 100 کروڑ روپے کی کمائی اب تک کر لی ہے, جبکہ یہ فلم 4 ہندی بھاشی راجیوں میں ریلیز نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ پدماوت سے جڑی ہوئی ہی ایک اور خبر آج کے انڈین ایکسپریس میں ہے. سینسر بورڈ کے ادھیکش پرشون جوشی جے پور میں چل رہے ساہتیہ سمیلن میں نہیں پہنچے ہیں اسی وواد کے چلتے, کیونکہ انہیں کئی طریقے کی دھمکیاں دی گئی تھی. ذکر کروں گا آج کے سنڈے ٹائمز میں پرکاشت ایک وشیش رپورٹ کا, جس کے مطابق کوٹا میں جو بچے کوچنگ کی تیاری کرنے جاتے ہیں وہ ڈرگز, سیکس کی لت اور تناو کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک شودھ کے حوالے سے یہ چنتا جنک رپورٹ آج سنڈے ٹائمز نے پرکاشت کی ہے. اور اسی اخبار نے بتایا ہے دلی کے ان 12 علاقوں کے بارے میں جہاں پردوشن کی وجہ سے, وایو پردوشن کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے.
جی,
اس کے علاوہ کل آئی پی ایل کی نیلامی ہوئی تھی, 12.5 کروڑ روپے میں اسٹاکس کی بکری ہوئی, اور یہ خبر کئی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے. آئی پی ایل سے جڑی ہوئی کئی خبریں ہیں. کسانوں سے جڑی ہوئی ایک خبر دینک بھاسکر نے پرکاشت کی ہے اپنے پہلے پنے پر, جس کے مطابق مودی نے 5 سال میں کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن کسانوں کی آمدنی دوگنی ہونا تو دور کی بات ہے, 2 ورش میں جو رپورٹ آنی تھی وہی آدھی تیار نہیں ہو سکی ہے.
جی.
اور اس کے علاوہ بھارت کے ہر کسان پریوار پر اوسطاً 47,000 روپے کا قرض ہے, یہ آنکڑا سنسد میں پیش کیے گئے آنکڑوں سے لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تصویر دینک بھاسکر نے پہلے پنے پر پرکاشت کی ہے, جس میں ڈال سے لٹک کر پیاس بجھاتے ہوئے ایک بندر کو درشایا گیا ہے, اور نیشنل جیوگرافک پر اس تصویر کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. اور اسی تصویر کے نیچے ایک دلچسپ خبر ہے, جس کے مطابق راجستھان میں ایک پولیس تھانہ ایسا ہے جہاں پچھلے 35 سالوں سے ایک مندر نرماناندھین ہے, اور اس کو کوئی بھی جو تھانہ ادھیکاری ہے اس کا نرمان پورا نہیں کرا رہا ہے, کیونکہ جو بھی اس کا کام شروع کراتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے, یہ آج کا اخبار بتا رہا ہے.
جی.
اس کے علاوہ جو کل کابل میں بم دھماکہ ہوا اس میں گھائل ایک بچے کی تصویر کئی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے. پٹیوں میں گرا ہوا یہ بچہ بستر پر اخبار میں لیٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ کابل میں جو وہ بم دھماکہ ہوا اس کے خوفناک منظر کو بتا رہا ہے.
جی بہت مارمک تصویر ہے.
اور اس کے علاوہ دلی میں جو عام آدمی پارٹی کے 20 ودھائکوں کا نلمبن ہوا ہے, 4 کی اور سدسیتا جا سکتی ہے, یہ آج کا دینک جاگرن بتا رہا ہے. اور ہم ذکر کریں گے جنستا میں پرکاشت ایک خبر کا جس میں جے پور ساہتیہ اتسو میں نہیں شامل ہوں گے پرشن جوشی, یہی خبر دہرائی گئی ہے.
جی.
اور اینکر خبر لگائی ہے جے این یو میں تو فرش دھو کر بھی خوش ہوتا, یہ ایک لیک چھاپا ہے آج جنستا نے.
بہت بہت شکریہ دل نواز, کافی خبریں آج شامل ہوئیں. تو اب جو وقت ہے وہ ہے کھیل سماچاروں کا.
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت. بھارت نے کل اپنے تیز گیند بازوں کے دم پر جوہانسبرگ میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں میزبان دکشن افریقہ کو 63 رن سے مات دی. دکشن افریقہ کے سامنے جیت کے لیے 241 رنوں کا لکشیہ تھا, لیکن اس کی پوری پاری 177 رنوں پر ڈھیر ہو گئی. بھارت کے محمد شمی نے قاتلانہ گیند بازی کرتے ہوئے 28 رن دے کر 5, جسپریت بمراہ نے 57 رن دے کر 2, ایشانت شرما نے 31 رن دے کر 2 اور بھونیشور کمار نے 39 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کیا. دکشن افریقہ کے سلامی بلے باز ڈین ایلگر 86 رن بنا کر ناباد رہے, ان کے علاوہ ہاشم آملہ نے 52 رن بنائے. اس کے بعد 10 رن کا یوگدان ورنون فلینڈر کا تھا. خطرناک ہوتے جا رہے وکٹ کا خوف بلے بازوں پر کتنا تھا اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ دکشن افریقہ کے باقی بلے باز دہائی کے انک تک بھی نہیں پہنچے. ویسے ایک سمے دکشن افریقہ نے 2 وکٹ کھو کر 124 رن بنا لیے تھے, لیکن اس سکور پر جب ہاشم معاملہ 52 رن بنا کر ایشانت شرما کی گیند پر ہاردک پانڈیا کو کیچ دے بیٹھے اور بس یہیں سے میچ کا پاسا بدلتا چلا گیا. ڈین ایلگر اور ہاشم معاملہ کے بیچ دوسرے وکٹ کے لیے 119 رنوں کی ساجیداری ہوئی. جیت کے بعد کپتان ویراٹ کوہلی نے پوری ٹیم کو شرے دیا اور کہا کہ پہلے دو مقابلوں میں بھی ہم جیت کے قریب تھے, لیکن یہ میچ ہمارے لیے شاندار رہا.
Hats off to the whole team for showing character even after losing the series, getting stuck in and you know understanding the importance of winning here and you know we knew we were close in the first two games but this was a very good game for us.
ادھر انڈونیشیا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں غیر وریتا حاصل بھارت کی سائنا نہوال فائنل میں پہنچ گئی ہے. کل کھیلے گئے سیمی فائنل میں سائنا نہوال نے چوتھی وریتا حاصل تھائی لینڈ کی رت چانو کنتانون کو 21-19 سے ہرایا. وہیں آسٹریلین اوپن میں مہیلا ایکل ورگ کا خطاب, کل دوسری وریتا حاصل ڈنمارک کی کیرولین ووزنیاکی نے شیرش وریتا حاصل رومانیا کی سیمونا آلپ کو 7-6, 3-6, 6-4 سے ہرا کر اپنے نام کیا. اسی بیچ کھیل پریمیوں کے لیے تب دکھد سماچار آیا جب سال 1956 کے اولمپک میں سورن, 1960 کے اولمپک میں رجت اور 1964 کے اولمپک میں سورن پدک جیتنے والی بھارتیہ ہاکی ٹیم کے اہم سدسیہ رہے ہری پال کوشک کا 84 سال کی عمر میں بیتے گروار کو ندھن ہو گیا.
اور جاپان میں کروڑوں ڈالر کی قیمت کی ڈیجیٹل کرنسی چوری ہو گئی ہے. کیا ہے یہ پورا معاملہ آپ جاننے کے لیے بی بی سی ہندی .com پر آ سکتے ہیں, اور ساتھ میں دیش دنیا کی انیہ خبریں اور وشوسنیہ وشلیشن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کارکرم کے آخر میں اس سے پہلے کہ ودا لیں, مکھیہ سماچار دل نواز پاشا سے.
افغانستان کی سرکار نے کابل میں ہوئے آتمگھاتی حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار بتایا ہے. اس حملے میں 95 لوگ مارے گئے ہیں اور 150 سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں. اتر پردیش کے کاس گنج میں گڑتنتر دیوس کے دن ہوئی سامپردائک ہنسا کے بعد تناؤ برقرار ہے. شہر کے کئی علاقوں میں رہ رہ کر آگجنی اور ہنسا کی گھٹنائیں ہوئی ہیں. حالانکہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ استھتی نینترن میں ہے اور اب شہر میں کرفیو نہیں ہے. سوشل میڈیا پر افواہوں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں. چیک گڑراجیہ کے راشٹرپتی میلو زیمان نے پھر سے راشٹرپتی پد کا چناؤ جیت لیا ہے. انہوں نے بے حد کم انتر سے ملی اپنی جیت کا سواگت کیا ہے. امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کی راشٹریہ سمیتی کے وتیہ چیئرمین نے یون درویوہار کے آروپ لگنے کے بعد پد سے استعفیٰ دے دیا ہے. راشٹرپتی ٹرمپ کے ارب پتی دوست اسٹیو ون پر آروپ ہے کہ انہوں نے درجنوں مہیلا کرمچاریوں سے یون کاریہ کروائے. स्पेन की संवैधानिक अदालत ने कैटलोनिया के स्वनिर्वासित नेता कार्लस प्यूज़डीमोन से कहा है कि उन्हें निर्वासन से लौटने के बाद ही क्षेत्र के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जा सकेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।